आज क्लास है राजा बनने वालों के लिए। कौन कौन बनेंगे? अच्छा, प्रजा कोई नहीं, ठीक है। ऐसा ही चाहते है बाबा कि मेरा हर बच्चा राजा बेटा हो। प्रजा तो बहुत आने वाली है। कल की मुरली पे ध्यान दें अब आप। कल सवेरे राज पद वालों के संस्कार, चार बातों की चर्चा की बाबा ने, उन पर ही हम चर्चा करेंगे। राज पद पाने वालों के संस्कार, सुशील भाई। हाँ, माताओं ने नहीं सुना, बोलो बोलो। वाह, बड़ा अच्छा, सबने रख लिया है। अधिकारी, अपकारी, निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी भी आ गया। निरहंकारी तीनों आ गए, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, अधिकारी और सत्कारी। बहुत गुह्य बात है। कई लोग सोचते हैं हम यहाँ राजा बनेंगे तो वहाँ भी बनेंगे। डांटो डपटो अपने साथियों को, उन पे राज करो तो वहाँ भी राजा बन जाएंगे। आदेश देने के संस्कार होने चाहिए हमारे अंदर। पर बहुत सूक्ष्म रहस्य है ना। अधिकारी वो राज्य अधिकारी, अधिकारी में किस किस पे अधिकार, अब यहाँ करेंगे गहन चिंतन। यहाँ के अधिकारी वहाँ के अधिकारी बनेंगे। अधिकार किस किस पे? स्वराज पहला, अपने पर अधिकार अर्थात अपने मन बुद्धि संस्कार कर्म इंद्रियों पर अधिकार। अगर हमें मीठा नहीं खाना है, जलेबी बनी है, सुगंध आ रही है, भोग भी है, भोग का सम्मान भी करना है, दो दो तीन तीन जलेबी मिल रही बड़ी बड़ी, लेकिन शुगर है, अब अंदर से आवाज आ रही खाएंगे तो शुगर बढ़ जाएगी, भोग है खा लेना चाहिए, जीत भी कह रही खाओ, क्या है एक दिन में क्या होता है, दो बार गोली खा लेंगे। और एक है कंट्रोल कि नहीं, जीव के रस पर हमारा अधिकार, कानों पर हमारा अधिकार, हम व्यर्थ न सुने। चाहना की तो बात ही नहीं, इसमें ये नहीं कहा जाएगा हम चाहे तो सुने, सुनना ही नहीं है। देखना, आंखों पर पूरा अधिकार। अगर हम आत्मा को देखना चाहते हैं तो वही देखें, देह नहीं। हम दुनिया को भी तीसरे नेत्र से देखें, इस भाव से देखें कि सब कुछ विनाशी है। अधिजान की बहुत अच्छी बात कहती थी, मैंने तब से ही वो नोट कर ली थी, चारों युग संसार को दो आंखों से देखा, अब तीसरे नेत्र से देखो। बहुत सुंदर ये साधना है। तो अधिकार एक स्वयं पर, अब और आगे चलो, अधिकार किस पे? सोचो सभी मनोविकारों पर, वो भी हमारे कंट्रोल में। जिसने माया को जीत लिया वो जगत जीत ये रहस्य है। कभी जैसे माया को देख लिया वो बहुत पावरफुल है। माया को देखना सहज काम नहीं है, इसके लिए क्या चाहिए? हिम्मत के बाद भी कुछ चाहिए, योग बल चाहिए। बिना योग बल के विकारों को दबाया तो जा सकता है लेकिन नष्ट नहीं किया जा सकता। बहुतों के साथ हो रहा है इस समय, कुमार कुमारियां, अगर कुमार अगर कुमारियां, सबके साथ हो रहा है। मायावी संस्कार इमर्ज हो रहे हैं, दसवीं साल ज्ञान में चल के छोड़ रहे हैं कि अब चला नहीं जाता। बहाना दे देते हैं, बहन जी अच्छी नहीं है, पर असली बात कुछ और है। बहाना दे देते हैं, यहाँ तो ये होता है वो होता है, पर असली बात विकार काम कर रहे, उनको आकर्षित कर रहे हैं मेरे पास, क्योंकि फोन आते हैं बहुत। छोड़ने वाले फोन नहीं करते, पर जिनको माया सता रही है वो पूछते हैं हम क्या करें। अच्छे अच्छे केस देख कर हैरानी होती है, पक्के ज्ञान में चलने वाले गृहस्थी नाता जोड़ रहे हैं। इसमें बहुत बड़ा काम किया फेसबुक ने, माता तो नहीं जानती फेसबुक क्या है, सबके फेस बिगाड़ दिए। फेसबुक बहुत दुर्गति की ओर ले जा रही है मनुष्यों को। मैं भी नहीं जानता सुशील भाई फेसबुक क्या होती है, मेरे पास उसका अकाउंट नहीं है, लेकिन सुनता हूँ कि फेसबुक बड़ी खतरनाक चीज चल रही है। हम तो इन चीजों से मुक्त हैं भाई। मुझे तो पता नहीं उससे आगे वहाँ तक पहुँच गए हैं, पर देखो ये विज्ञान का विकास और इधर माया का विकास दोनों साथ साथ चल रहे हैं ना। तो विज्ञान का विकास सुखों के लिए है, लेकिन उसका मिसयूज माया की तरफ ले जाता है, इसलिए इन चीजों से बचना ही चाहिए। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, 3 साल पहले की बात होगी, ज्ञान सरोवर में संदेश आया। वेदांती बहन है ना अफ्रीका की, वो आई थी, भोग लगाती है ध्यान में जाती है, तो बाबा ने उसको दिखाया कि बहुत सारे बच्चे अपने कार्य को भूलकर इलेक्ट्रॉनिक्स के साधनों में लग गए हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैं तो लगा हुआ भी नहीं हूँ, पर मुझे अच्छी लगी ये बात कि अपने कर्तव्यों को भूलकर हमें कितने महान कार्य करने हैं और हम इस तरफ बढ़ जाएं और फिर गलत दिशा में हमारे कदम बढ़ जाएं तो ये अच्छा नहीं होता। और इससे क्या हो रहा है युवकों में, एक बहुत बड़ी चीज होती जा रही है। माताएं समझें इस बात को अपने बच्चों के लिए कि सुसाइड बहुत कर रहे हैं युवक। मैं कोटा में था अभी, एक भाई ने अपना लड़का 19 साल का इंजीनियरिंग के लिए कोचिंग में भेजा। कोचिंग होती है ना स्पेशल ट्यूशन जैसा, तो गांव है वो, गांव में रहते हैं, कोटा शहर में भेजा। माँ कोचिंग का सबसे बड़ा केंद्र है भारत का, वो मतलब लाखों बच्चे वहाँ रहते हैं, उनके हॉस्टल बने हैं। तो बस किसी से प्यार हुआ, प्यार में धोखा हुआ, जिससे प्यार किया उसने कहा मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, सुसाइड कर लिया। 19 साल का लड़का, एक ही लड़का था, सुसाइड कर लिया। तो सुसाइड करने वाले अपने माँ बाप के बारे में तो कुछ सोचते नहीं, उन्हें तो मरना है, तुमने प्यार का अच्छा रेस्पॉन्स नहीं दिया, हम मरे। तो बहुत दुर्गति की ओर जा रहा है हमारा देश भी। ये चीजें विदेशों में थी बहुत ज्यादा, अब ये भारत में आ गई है 5 साल में ही। और ये जो इंटरनेट और ये फेसबुक और क्या तीसरा बताया और मोबाइल, मैं तो इसका नाम याद करने मुझे देर लगेगी, हैं? व्हाट्सएप डाउन नहीं करता, डाउन है, नाम अप रख लिया। तो हमें अधिकारी बनना है कि हमें ये चीजें नहीं तो नहीं, कैसे नहीं हमारा मन उधर को रस लेने लगे और हम खींचे चले जाएं और अपनी वास्तविक स्थिति को और वास्तविक कर्तव्यों को भूल जाएं, जो इतने पावरफुल बनेंगे कि मास्टर सर्वशक्तिवान हो जाएं और जो वो चाहें वही करें, कर्मेंद्रियां उन्हें अपनी ओर खींच न सके, वो होंगे जगत जीत। तो हमें अधिकारी बनना है। और किस पर अधिकार? सारी चलो बहुत सुंदर बात, सर्व शक्तियों पर अधिकार, प्रकृति पर अधिकार, शक्तियों पर अधिकार। बहुत अच्छी अच्छी मुरलियाँ चल चुकी हैं पहले इस पर कि सर्व शक्तियाँ तुम्हारी हैं और तुम्हारा आदेश मानने के लिए बाध्य हैं। कभी बाबा ने ये कहा, जब तुम्हारे बुलाने से स्वयं भगवान भी आ जाते हैं तो क्या तुम्हारे बुलाने से शक्तियाँ नहीं आएंगी? बुलाना वाना वो कोई मनुष्य तो नहीं है, लेकिन हम संकल्प करेंगे, हमें चयन करना है कहीं तो संकल्प करेंगे, मेरे पास सहन शक्ति है, मैं कुछ भी सहन कर सकती हूँ, चाहे सर्दी क्यों ना हो, चाहे दैहिक बीमारी क्यों ना हो, किसी के शब्द, किसी का अपमानजनक व्यवहार, जो कुछ भी मनुष्य को सहन करना पड़ता है, सबसे ज्यादा अपमान व्यवहारिक बात जो सहन करना कठिन होता है, तो उसमें हम अपनी शक्ति को याद करेंगे कि मेरे पास सहन शक्ति है, तो ये हुआ उसका आह्वान करना और वो काम करने लगेगी। तो शक्तियों पर हमारा अधिकार, यानी सर्व शक्तियों के हम मालिक। हम ये नहीं कह सकते कि मेरे पास ये शक्ति नहीं है, हम तो मालिक हैं उनके, वो तो हमारे आदेश का पालन करने के लिए तैयार हैं। बाबा ने कभी एक और बहुत अच्छी बात कही है कि जैसे राजाओं के पास दास दासियां होते हैं, वो इंतजार करते हैं हमारा राजा, हमारा मालिक कब हमें ऑर्डर करे। और भी अच्छी बात कि जो उनमें बुद्धिमान होते हैं वो बिना ऑर्डर के ही जानते हैं कब क्या करना है, तो राजा का पूरा ध्यान रखते हैं। ये सबसे अच्छी बात हो गई ना। तो जो मास्टर सर्व शक्तिवान बनते हैं, जो शक्तियों के अधिकारी बन जाते हैं, उन्हें शक्तियों को आदेश देने की भी जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि शक्तियाँ स्वतः ही काम करती हैं। कहीं भी हमें सहन करना है तो नेचुरली बड़े सहज भाव से हम सहन कर लेते हैं। हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है तो ऑटोमेटिकली हमारी शक्तियाँ काम करने लगती हैं। जैसे आजकल गाड़ियाँ निकली हैं बहुत अच्छी कारें, तो उनमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं, मान लो गाड़ी तेज चल रही है हमारी, तो जो स्टीयरिंग होता है ना पहिया सा घुमाने वाला, वो आप ही थोड़ा हार्ड हो जाएगा। फिर जब तेज चल रही है, अगर वो लूज होगा तो कहीं भी मुड़ सकता है ना, आप ही वो हार्ड हो जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक्स ने कर दी है जो स्वतः ही काम करती है जरूरत में, जैसी जरूरत वो स्वतः ही सामने। तो वैसे ही शक्तियों पर हमारा अधिकार, तो शक्तियाँ भी स्वतः ही काम करेंगी। प्रकृति पर अधिकार बहुत बड़ी चीज है ये, जो मास्टर सर्व शक्तिवान बन जाते हैं, जो अपने को देह से न्यारा अनुभव कर लेते हैं। देखिए बहुत सिंपल सी चीज याद रखेंगे, ये देह हमारी प्रकृति है, जिसने इस प्रकृति पर अधिकार कर लिया, जो इस प्रकृति के मालिक हो गए, वो संपूर्ण प्रकृति के मालिक हैं। जिनकी ये देह प्रकृति कर्मेंद्रियां आदेश मानती हैं, प्रकृति के पांचों तत्व भी उनका आदेश मानेंगे। और हम देह के मालिक हैं, इसका सीधा सा स्वरूप होगा कि हम जब चाहें देह से डिटैच हो जाए, न्यारे एक सेकंड में देह से न्यारे। ये बाबा ने अस्वस्थों की पहचान भी बताई है, जो अस्वस्थ होंगे तो एक सेकंड में एकदेही हो जाएंगे। ये है प्रकृति के मालिक बन गए, प्रकृति पति इसको कहते हैं बाबा, और इससे हो जाता है हमारा प्रकृति पर अधिकार। तब ये देह की प्रकृति भी हमें कष्ट नहीं देगी, इसमें कष्ट तो आते हैं ना, हिसाब किताब सबको चुप चुप करना है, तो बीमारियों के रूप में अनेक कष्ट इस देह में आते हैं। लेकिन अगर हम देह के मालिक बन गए, प्रकृति पति, तो देह के रोग हमें कष्ट नहीं देंगे, रोग होंगे। मान लो पेट दर्द हो रहा है, कमर दर्द है, वो होगा, लेकिन हम उससे पीड़ित नहीं होंगे। बहुत दर्द हो रहा है, सहन नहीं होता है, हम तो परेशान हो गए, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ, ये नहीं होगा। सहज, तो इन चारों चीजों के हम मालिक बने। और भी अधिकारी में किसी को कोई बात याद आ रही है? अधिकारी हमें बनना है। मन बुद्धि के अधिकारी की बात बहुत बड़ी है, सबसे बड़ी, और इसका अर्थ है कि हम अपने मन बुद्धि को जहाँ चाहें, जब चाहें, जिस स्वरूप पर चाहें एकाग्र कर सकें। तो एकाग्रता जिसके पास बहुत अच्छी है वो है मन बुद्धि के मालिक, सत्कारी। तो जो न मालिक वो वहाँ मालिक, ये नहीं मैं तो शंकर की मालिक हूँ तो वहाँ मालिक बनूंगी, मैं तो यज्ञ की मालिक हूँ तो वहाँ मैं मालिक बनूंगी, ये कुछ नहीं चलेगा। बाबा ने इसको बहुत स्पष्ट किया हुआ है, मुरलियों में सारे राज खोले हुए हैं कि कोई कहीं यज्ञ का इंचार्ज बना है, किसी को किसी विशेष सेवा की जिम्मेदारी मिली है, बड़ी जिम्मेदारी मिली, वो है उसकी मेहनत और योग्यता का फल। लेकिन ये जो राज्य अधिकार प्राप्त होगा इसकी गति हुई है, वो सेवा के फील्ड में कोई आगे है अपनी किसी योग्यता के कारण, लेकिन ये फील्ड अलग है। सत्कारी, जैसे आजकल वोटिंग होती है, जिसको ज्यादा वोट मिल गए वो विजयी। तो बाबा ने ये रहस्य बताए हुए हैं, सतयुग के मालिक महाराजन वो बनेंगे जिनको ज्यादा वोट होंगी। कैसी वोट? यहाँ इलेक्शन तो होगा नहीं, मन से, मन से जो जिसे ज्यादा चाहते हैं, दिल से जो जिसे अपना राजा स्वीकार करते हैं, उनकी वोट उसको चल गई। तो बाबा ने कभी ये कहा है, जैसे बाबा कहते हैं तुम अपनी प्रजा बनाओ तो राजा बन जाओगे, ये थे साकार में उस समय के महाराज, जब कोई सेवा करता नहीं था, जब विरोध बहुत था, जब किसी को समझाना नहीं आता था। लखनऊ में प्रदर्शनी हुई तो समझाने के लिए कौन कौन गए? दिल्ली से जगदीश भाई, बॉम्बे से रमेश भाई, और जो बड़े बड़े लोग थे, चंदावनी दादी वहाँ की इंचार्ज थी। तो प्रश्न उठा कि भाई रात को बैनर बांधने हैं, अब सबको बुलाए हैं बड़े बड़े, छोटे तो समझाना जानते नहीं थे, अब बैनर बांधने कौन जाए? फिर वहाँ पर्चे बांटने हैं, अब इनमें से कौन पर्चे बांटने जाएगा? तब महसूस हुआ कि छोटों की भी बहुत जरूरत है, बड़ों से काम है। कहा ना, जहाँ जहाँ बड़ी चीज से काम करना सुई क्या करेगी, और जहाँ सुई का काम है भाला क्या करेगा? भाला हमारे पास हो और हम सोचे सब काम इससे हो जाएंगे तो बटन लगेगा। तो सत्कारी, जिसके लिए सबको दिल से सत्कार हो। और ये सत्कार कैसे मिलता है? तो चार बातें निकालेंगे। एक तो स्वमान से सम्मान मिलता है, दूसरा अब माताएं बताएंगे, नम्रता से, सिक्का गुणों से, जिसके पास बहुत अच्छे गुण हैं, जो दूसरों को सहयोग करते हैं, प्यार देते हैं, उन्हें सबका सत्कार मिलता है। पीछे मुरली में एक बहुत मजे की बात आई थी कि कुछ देवियां और देवता ऐसे हैं मंदिर के, उनके मंदिरों में पुजारी नहीं होते। क्यों नहीं होते बोलो, किसी को याद है? मैंने यहाँ क्लास में सुनाया था, ये पुजारी उनके मंदिरों में नहीं होते जिन्होंने अपने साथियों को प्यार नहीं दिया। ये भाई बाबा ने कहा था, मैं नहीं कहता हूँ, एक मास पहले की अभ्यक्त मुरली है रिवाइज, उसमें ये महावाक्य था, अपने साथियों को प्यार नहीं दिया तो उनके मंदिरों में पुजारी नहीं होते, कोई धोने वाला नहलाने वाला भी नहीं होता, कोई भोग खिलाए, कोई पूजा पाठ करे, वो होता ही नहीं। रहस्य है ना इन सब बातों में, किसे मिलता है सबका सत्कार? जो श्रेष्ठ कर्म करते हैं, पुण्य कर्म, सत्कार को विन कराते, अधिकारी बना देते हैं सत्कार के। तो स्वमान से सम्मान मिलता है, श्रेष्ठ कर्मों से सम्मान मिलता है, अच्छे गुणों से सम्मान मिलता है। कोई बहुत बड़ा आदमी हो लेकिन ऊंचा करे तो लोग भले ही वो बड़ा है, इंचार्ज है, तो उसकी बात तो माननी है, पर दिल से सत्कार नहीं देंगे। श्रेष्ठ स्थिति से सत्कार मिलता है। कोई बहुत बड़ा व्यक्ति हो और योग करता ही ना हो, पता लगता हो कि इनका योग तो है ही नहीं, तो सत्कार नहीं रहेगा। तो जितना सभी ब्राह्मण परिवार सच्चे दिल से किसी को सत्कार देंगे, जैसे हमारी दादी है, दोनों दादी बोले को सत्कार देते हैं या नहीं, तो ये सत्कार है। चाहे वो किसी से खास संपर्क में नहीं आ रहे, भाई दोनों ही तबीयत भी ढीली रहती है, बुजुर्ग भी बहुत हो गए, लेकिन सब दिल से सत्कार देते हैं ना, तो ये राज्य अधिकारी बनने की पहचान है। सत्कार मांगने की चीज नहीं है, सत्कार अधिकार से प्राप्त किया जाता है। ये बात है ना, कोई कहे मैं तो बड़ा हूँ तुम मेरा सम्मान नहीं करते, मैं तुम्हारा इंचार्ज हूँ तुम मेरा रिगार्ड नहीं करते, ये हुआ मांगना। चलो भाई वो आप मांग रहे हैं तो करना पड़ेगा बेचारों को। हमारे पास एक ऐसा व्यक्ति भी नहीं थे, सबको कहता तुम ओम शांति भी नहीं करते मुझे, तो बेचारे डर के ओम शांति करते हैं, लेकिन मौका पाते ही अलग हो जाते हैं कि मौका मिले तो अलग को चल दे। तो ये मांग कर प्राप्त किया हुआ सत्कार है। तो हम सत्कार के भी अधिकारी बने और साथ में सत्कार दे भी, केवल लेने वाले नहीं देने वाले भी। सीधा सा रहस्य जो बाबा सुनाते भी हैं, मान देंगे तो मान मिलेगा, ये भी एक रहस्य है। लेकिन हम इसलिए मान नहीं देंगे कि हमें मिले, मान देना भी हमारी रॉयल्टी है, नहीं तो ये भी एक इच्छा हो गई ना, भाई सबका सम्मान करो तो तुम्हारा भी होगा, इसकी जरूरत नहीं, लेकिन मान देना हमारी रॉयल्टी है, ये हमारी शालीनता है, ये राजाई संस्कार है। तीसरी चीज निराकारी, निराकारी था ना, अब इस रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे कि निराकारी स्थिति से राजाई संस्कार कैसे बनेंगे। निराकारी स्थिति, बाबा ने कल निर्विकारी नहीं बोला, जबकि वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज है राजपद के लिए, क्योंकि जितनी ज्यादा पवित्रता किसी के अंदर होती है संस्कारों में उतनी रॉयल्टी होती है, प्योरिटी इज रॉयल्टी। लेकिन कल बाबा ने निराकारी कहा, तो निराकारी स्थिति आने पर हमारे अंदर राजयी संस्कार कैसे आ जाते हैं, करें चिंतन। तभी निराकारी स्थिति माना सरल शब्दों में आत्माभिमानी स्थिति, बिल्कुल देवहन खत्म हो गया, हमारे व्यर्थ संकल्प खत्म हो गए, तो हम हो गए निराकार। ये प्रैक्टिस भी हम करेंगे। और जब हम आत्माभिमानी हो जाते हैं, इसका अर्थ है आत्मा के सातों गुण हमारे जीवन में आ गए, जैसे देव स्वरूप में हम आत्माभिमानी हैं, लेकिन हम अभ्यास थोड़ा ही करेंगे मैं आत्मा हूँ, क्योंकि आत्मा के सातों गुण जीवन में हैं। ज्ञान उनके पास नहीं है, लेकिन जीवन ज्ञान का स्वरूप है, प्रेम स्वतः ही बांट रहे हैं वो। तो राजा देखो, राजा के बारे में विचार करो, सफल राजा वो जो सबको सुख दे। आजकल के राजाओं की तरह नहीं, आजकल के भी तो ये सब राजा हैं ना, लेकिन उनके अंदर ये भावना नहीं है कि हमें सबको सुख देना है। ऐसे बहुत कम लोग पॉलिटिक्स में आज हैं, बहुत कम हैं कि भाई हमें जनता का ख्याल करना है, उनके लिए कल्याणकारी चीजें करनी है, सबको सुख मिले, सबके काम हो जाएं, सबकी प्रोग्रेस हो, ऐसा कुछ करें, ऐसा चिंतन करने वाले गिने चुने रह रहे हैं आजकल। तो सफल राजा वो जिसके राज में सारी प्रजा सुखी रहती हो। तो सुख स्वरूप है ना आत्मा, केवल खुद दुख पाने वाले नहीं, सुख बांटने वाले। खुद सुख पाना ये भी एक स्थिति है, लेकिन सुख पाकर सुख बांट देना ये हृदय संस्कार है। प्रेम स्वरूप आत्मा जो राजा माना प्रजा का मात पिता, जो प्रजा की पालना करते हुए प्यार से उसकी पालना करे, प्यार बांटे, जैसे माँ बाप अपने बच्चों को प्यार बांटते हैं, वैसे ही राजा सारी प्रजा को प्यार बांटे। यहाँ भी राजा ही संस्कार माना प्यार बांटने के संस्कार। ऐसी हर चीज से देखो शक्ति स्वरूप है आत्मा। राजा माना बहुत शक्तिशाली, वो कमजोर नहीं हो सकता। अगर सतयुग में किसी कमजोर को राजा बना दे, मान लो हम सोचते थोड़ी देर के लिए सतयुग में कोई समस्या नहीं, सतयुग में कोई लड़ाई करने नहीं आएगा, सेना नहीं होगी, तो किसी को भी गद्दी पे बैठा दिया जाए, लक्ष्मीनारायण की क्या जरूरत वहाँ, अश्वत्थों की क्या जरूरत वहाँ, किसी को बैठा देना, हमको तो बैठना है। क्या उत्तर है इसका? मान लो राम सीता को त्रेता की बजाय सतयुग का राजा बना दिया जाए तो क्या नुकसान होगा? बहुत जल्दी पतन हो जाएगा। अगर सतयुग 1250 साल में त्रेता बनता है तो 50 साल में त्रेता बन जाएगा, क्योंकि आत्मा की वाइब्रेशन वो इतने शक्तिशाली तो नहीं है। तो जो सबसे अधिक शक्तिशाली हैं, वो बिल्कुल शुरू में राजपद के अधिकारी बन रहे हैं। तो निराकारी बनने से हम बहुत शक्तिशाली बन जाते हैं। तो आत्मा के सारे गुण राजाई संस्कारों को इमर्ज करा देते हैं, उनका निर्माण करते हैं। इसलिए आज भी मुरली में था बार बार, क्या बनो? देही अभिमानी बनो। बिना देही अभिमानी बने ज्ञान की धारणा होगी नहीं। तो आत्मा उसकी मन बुद्धि पवित्र हो जाती है। आत्मा का एक गुण है पवित्रता, और पवित्रता से बहुत संस्कार दिव्य हो जाते हैं। बाबा ने पवित्रता का मार्ग हमें दिखाया, आत्मा को पावन बनाने के लिए भी, योग लगाने के लिए भी, साथ में संस्कारों को दिव्य बनाने के लिए भी। राजयी संस्कार वास्तव में प्योरिटी से ही बढ़ते हैं, उनका विकास होता है। सुख देने के संस्कार, मदद करने के संस्कार, दूसरों के दुखों को फील करने के संस्कार। राजा वो जो अपनी प्रजा के दुखों को, सतयुग की बात हम नहीं कर रहे, वहाँ तो दुख है नहीं, पर द्वापर युग से भी सफल राजा वो जो प्रजा के दुखों को महसूस करता हो, जिसको आजकल कहते हैं संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी, बहुत सेंसिटिव हो, संवेदनशील हो राजा, उसे ये आभास हो कि मेरी प्रजा का दुख मेरा दुख है, और उसे वो तत्काल निवारण करे। तो ये सब निराकारी स्थिति के स्वरूप हैं। निराकारी नहीं होंगे तो व्यर्थ संकल्प बहुत चलेंगे, सीधा सा इसका स्वरूप ये है। और व्यर्थ संकल्प चलेंगे तो क्या होगा? आत्मा की शक्तियाँ नष्ट होती जाएंगी। व्यर्थ संकल्प से सबसे बड़ा नुकसान है आत्मा निर्बल होती जाती है। चौथी चीज है, चौथा गुण बताया, निरहंकारी। क्यों जरूरी है राजाई संस्कारों के लिए निरहंकारिता? अगर अहंकार आ गया तो क्या नुकसान होगा? बोलो। एक तो सत्कार भी नहीं मिलेगा, अहंकार आते ही सत्कार नष्ट हो जाएगा, अहंकार आते ही बोल बिगड़ जाएंगे, और राजाई संस्कार वालों के बोल बहुत रॉयल होने चाहिए, महान होने चाहिए। अहंकार होगा तो व्यवहार अलग दिखाई देगा, जबकि राजा का व्यवहार बहुत रॉयल होना चाहिए। राजा, अब भी हमने देखे कई राजा हमारे यहाँ भी आए, सिरोही के राजा के पास हम कई बार गए उसके महल में, तो बहुत रॉयल होते हैं ये लोग। देखो कलयुग के अंत की बात है, जब वो राजा हैं भी नहीं, केवल नाम रह गया है, तो अभी बहुत रॉयल्टी। हम उदयपुर में भी है, वहाँ के राणा होते हैं बहुत रॉयल, बड़ी अच्छी तरह बात करते हैं, शालीनता से बात करते हैं। ये नहीं कहते क्यों आ गए तुम यहाँ, हम तुमसे मिलने के लिए थोड़ा ही, जैसे ऑफिसर होते हैं ना, वो ऐसा गलत व्यवहार कर लेते हैं। लेकिन ये लोग नहीं, बहुत शालीनता। तो हम निरहंकारी भी बने, निरहंकारी बनने से बाबा देखो, बाबा को देखो, शिव बाबा संपूर्ण निरहंकारी, और ब्रह्मा बाबा वो भी बिल्कुल उतना ही। इसलिए दोनों भोलानाथ, जब आत्मा बहुत निरहंकारी बन जाती है तो निर्मल हो जाती है, तो देखने वालों को बड़ा भोलापन दिखाई देता है, इनोसेंस, बिल्कुल कोई कटुता नहीं, कोई चालाकी नहीं, कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं, बिल्कुल पवित्र हो गई आत्मा। संपूर्ण पवित्रता ही निर्मलता है और भोलापन है, निरहंकारिता है। तो ये सब चीजें हमारे अंदर राजाई संस्कारों को इमर्ज कराती हैं। तो हम सभी इन पे ध्यान दें, जिनको राजा बनना है। अब वो प्रजा बनाने की बात तो पीछे हो गई, हाँ मैं वो बात बीच में छोड़ दी, भूल गई मुझे। बाबा साकार में कहते थे प्रजा बनाओ तो तुम राजा बनोगे, ठीक है। पीछे व्यक्त में बाबा ने कहा, मान लो तुमने बहुत प्रजा बनाई और तुम स्वयं राजा बनने लायक नहीं बने, तो तुम्हारी प्रजा उसको चली जाएगी जो राजा बनने लायक बने हैं, वो खींच लेंगे तुम्हारी प्रजा को, क्योंकि राजा भी तो चाहिए ना। देखो प्रजा राम को ज्यादा है या नारायण को, किसको ज्यादा है? और जो त्रेता के अंत का महाराजा होगा उसकी प्रजा 33 करोड़ 30 करोड़ तक हो जाएगी, फिर बढ़ेगी, तो प्रजा उनको ज्यादा है, लेकिन उनकी प्रजा उतनी योग्य नहीं है जितनी लक्ष्मी नारायण की प्रजा योग्य है। संपूर्ण सतो प्रधान, बिल्कुल रॉयल, सर्व गुणों से संपन्न, सर्व कलाओं से युक्त, संपूर्ण पावन, तो प्रजा भी हाईएस्ट क्वालिटी की, और त्रेता के अंत में प्रजा भी अब गिरने वाली है, बस देवत्व नष्ट होने वाला है उनका, वो प्रजा है, और राजा भी ऐसा ही है कि उसकी राजाई जाने वाली है, युग ही बदल जाएगा सब कुछ। लक्ष्मी नारायण के लिए ये कहा ही नहीं जाएगा, उसकी राजाई जाने वाली है। तो कौन कौन बनेंगे अपने से राजा? अब हाथ उठाओ ईमानदारी से, अब थोड़े रह गए ना, अब सभी अपने को चेक कर लेना कि हम में ये सब क्वालिटी है या नहीं। देखो मोटे रूप से जो सफल राजा होते हैं उनमें तीन चीजें होनी चाहिए। एक, बहुत अच्छा चरित्र। दूसरा, श्रेष्ठ बुद्धि। और तीसरा, बहुत शक्तिशाली निर्भय। राजाओं को बहुत बुद्धिमान होना चाहिए, आप जैसे नहीं। वो सारे नेता कैसे होते हैं? उनको साइन करने भी नहीं आते, उनके ऑफिसर तो नहीं सिखाते हैं कि सर आपको ये काम करना है, अब ये आपके अधिकार हैं, अब आप ये कर सकते हो, ये कानून है इस डिपार्टमेंट के। उन्हें कुछ आता नहीं, गांव से आ गए बेचारे, कोई तो बिना पढ़े लिखे ही होते हैं, कोई दूसरे क्रिमिनल फील्ड के ही होते हैं, पहले से लड़ाई झगड़ा करने वाले, कईयों का मर्डर करके आए हैं, सब नेता बने हैं। तो आजकल के राजाओं का तो ये समाचार है, लेकिन जो असली राजा हैं, चरित्रवान, बुद्धिवान और बहुत शक्तिशाली। शक्तिशाली माना किसी को मारने पीटने वाले नहीं, ये लोग शक्तिशाली होने का ये अर्थ भी समझते हैं। निर्भय, बहुत निर्भय, बहुत धैर्य चित्त। जो शक्तिशाली व्यक्ति होगा वो धैर्य चित्त होगा, उसमें उतावलापन, घबराहट, नर्वसनेस, कंफ्यूजन ये सब नहीं होंगे, बहुत स्थिर चित्त होंगे, अपनी शक्तियों में संपूर्ण विश्वास होगा, चरित्रवान। इतिहास में ये सब है, कि जो राजा चरित्रवान नहीं रहे उनकी राजाई बहुत जल्दी नष्ट हो गई। वंश चले हैं भारत में, इतिहास में दिखाया गया भिन्न भिन्न वंश चले। तो वंश किसी के साथ चले, किसी के पांच चले, और वहाँ वंश नष्ट हुआ जहाँ उनका वो राजा अंतिम जो राजा हुआ वो भ्रष्ट हुआ, चरित्रवान नहीं था। वहाँ उनका वंश समाप्त हो गया, किसी दूसरे ने उस पर अटैक किया और उसका राज छीन लिया। चाहे छोटे राज हुए चाहे धनराज हुए, मुख्य राजा भारत के चाहे छोटे राजा, द्वापर युग में भी भारत मुख्य सम्राट के अलावा पांच प्रांतों में बटा होता था। बहुत सारे नहीं थे ये, क्योंकि जनसंख्या ही बहुत कम थी। जनसंख्या कितनी थी आप समझ सकते हैं, जब भारत में अकबर का राज था तब से लगभग 500 साल हुए हैं, तब भारत की जनसंख्या 10 करोड़ थी और एक मजदूर की मजदूरी एक मास की कितनी होगी, एक रुपए में परिवार चलता था मास। एक पैसे का गेहूं ले आए काफी है बस, वो पैसे पैसे में काम होता था, लेकिन वो सब चांदी के होते थे। तो 10 करोड़ जनसंख्या थी 500 साल पहले भारत की, और अब कितनी होगी, 130 होगी, 130 होगी, होगी 13 गुनी हो गई है 500 साल में। तो बहुत सारी आत्माएं नीचे उतर आई हैं। तो राजा बहुत चरित्रवान, और चरित्र का मूल क्या है बोलो, पवित्रता। जिसने यहाँ जितनी पवित्रता अपना ली चारों युग वो उतने ही चरित्रवान रहेंगे। शक्ति कहाँ से आती है, योग युक्त होने से, स्वमानधारी होने से, स्मृति स्वरूप होने से। जैसी स्मृति वैसी समर्थि, स्मृति स्वमान और योग युक्त। जिसने जितनी शक्तियाँ यहाँ इकट्ठी कर ली उतनी ही शक्तिशाली वो चारों युग रहेंगे। और बुद्धि, निर्णय लेना होता है राजा को, इम्पोर्टेंट निर्णय होते हैं। राजा का एक निर्णय प्रजा को सुख दे सकता है, प्रजा को बचा सकता है, और एक गलत निर्णय सब कुछ नष्ट करा सकता है। युद्ध में धकेल सकता है अपनी प्रजा को, लूटपाट हो सकती है, अनेक अत्याचार प्रजा पे हो सकते हैं एक गलत निर्णय से। इसलिए बुद्धि बहुत दिव्य, और बुद्धि की दिव्यता किससे आती है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ये, और इसको जानना भी है। बुद्धि रिफाइंड डिवाइन दिव्य हो जाए, बहुत स्वच्छ हो जाए, क्या करना संगत युग पर हमें, व्यर्थ से मुक्त। बुद्धि को पहले स्वच्छ करेंगे, स्वच्छ बुद्धि के बाद दूसरी चीज है बुद्धि को दिव्य बनाने वाली, हमारी प्योरिटी। काम क्रोध की अग्नि उससे निकल गई, शीतल हो गई बुद्धि। और तीसरा बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है, सब जानते हैं, ज्ञान का। ज्ञान विवेक के द्वारा बुद्धि का निर्माण कर रहा है। ज्ञान का सार है विवेक, विजडम। और जिसके पास जितना सूक्ष्म विजडम है, विवेक है, उसकी बुद्धि उतनी श्रेष्ठ है। और फाइनली चौथी बात, योग से बुद्धि दिव्यता को प्राप्त करती है। तो हम अपनी बुद्धि को दिव्य बनाते चलें, डिवाइन बनाते चलें, ये बहुत सुंदर अवसर हमें प्राप्त हुआ है, शक्तिशाली। अब ध्यान रखना है कि बुद्धि ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हमारी, सबसे बड़ा खजाना है हमारे लिए। जैसे हम किसी कीमती चीज को कैसे रखते हैं घरों में, बहुत संभाल के। जैसे बाबा कहते हैं बहुत मूल्यवान हीरा हो तो बेचने वाले भी सोने की डब्बी में रखते हैं उसको, और साधारण सी चीज हो तो ऐसे ही दे दी जाती है। चांदी के गिलास वो बॉक्स में बंद करके दिए जाते हैं। सोने की अंगूठी और अच्छे उसमें दी जाती है, देखी होगी माताएं खरीदती होंगी। तो सबसे कीमती है बुद्धि, सबसे कीमती। इसमें जो विवेक हम इस समय भर लेंगे, वही विवेक जन्म जन्म हमारे काम आएगा। और सद्विवेक इसमें भरने के लिए इसको व्यर्थ से मुक्त यानी स्वच्छ करना आवश्यक है। तो सभी अपनी बुद्धि पर बहुत ध्यान दें। बुद्धि ही कंट्रोल करती है किसे? मन को। मन जो बहुत भटकता है, मन जो बहुत भागता है, उसको कंट्रोल करने के लिए चाहिए ज्ञान यानी विवेक शक्ति। तो बुद्धि मन को कंट्रोल करती है। बाबा ने कहा बुद्धि है मुख्यमंत्री और मन है मंत्री। मुख्यमंत्री कंट्रोल करता है ना सभी मंत्रियों को। तो बुद्धि को बिल्कुल हम स्वच्छ करें, दिव्य बनाएं। और शक्तिशाली कैसे बनेंगे? एक तो योग की चर्चा हम कर ली, इस पे शक्तिशाली चिंतन से ही। हमारे पास शक्तिशाली विचार होने चाहिए, हमारे पास विचारों में बहुत दृढ़ता होनी चाहिए। हमें स्वयं को निर्भय भी रखना है। जो भय है वो हमारी शक्तियों को जैसे खाने वाला है। भय हमें कमजोर करता है और शक्तियों को छीन करता है। इसलिए जितने मन में शक्तिशाली विचार होंगे उतने ही हम शक्तिशाली बनेंगे, हमारी शक्तियाँ जागृत रहेंगी। कई बार शक्तियाँ तो मनुष्य में होती हैं, लेकिन वो जागृत नहीं रहती, मनुष्य को उनका पता नहीं होता। जैसे हमारे ज्ञानामृत में भी एक लेख छपा ना, कई बार छपा है कि एक राजा ने ऐलान किया भाई ये पत्थर है, एक ही बार में हथौड़े के जो इसे तोड़ेगा, कुछ शर्त थी आगे कि ये होगा उसे, तो कोई तोड़ ही नहीं पा रहा था, हथौड़ा बहुत भारी था। तो राजपूत ना अपने कवि को भी साथ ले गया था, तो उसको कहा था कि जब मैं वहाँ जाऊँ तो मेरी महिमा में गीत गाना जरा। तो वो वहाँ पहुँचा, हथौड़ा बहुत भारी था, कईयों से तो उठा ही नहीं था, तो इसने गीत गाया। तुम्हारे पूर्वज इतने बलवान थे, मुक्के से पत्थर को तोड़ देते थे, तुम बहुत बलवान हो, तुम ऐसे वंश के हो, तुम ये हो वो हो, बस जोश जो आया उठाया मारा और टूट गया पत्थर। तो बाबा भी हमें स्मृतियाँ दिलाता है। सोई हुई शक्तियाँ जग गई थी ना, दिखाया वो दुबला पतला राजपूत था, लेकिन उसने एक ही बार में उस पत्थर को तोड़ दिया, शक्तियाँ जागृत हो गई। बाबा भी हमारी शक्तियों को जगाता है। तुम कल्प कल्प के विजयी हो, तुमने इस माया को कल्प कल्प जीता है, तुम इस माया से बहुत अधिक शक्तिशाली हो। ये सब याद दिला के हमें जगाता है बाबा। बस जरूरत है, हम फिर सो जाते हैं ना, विस्मृति माना सोना, यह भी नींद में सो जाते हैं और प्रश्न करने लगते हैं अब इस क्रोध को कैसे जीते हैं। बाबा फिर याद दिलाता है तुमने करोड़ों बार जीता है इसे, एक दो बार नहीं, तुम इसको जीतते ही आए हो, तब भी जीत लोगे, केवल अपने मन में दृढ़ संकल्प करो और एक यथार्थ विधि को प्रयोग करो। तो बाबा हमारी सोई हुई शक्तियों को जगाकर हमें बहुत शक्तिशाली बना रहा है। जिसको और शक्तिशाली बनना है और योग को भी सफल करना है, सहज बनाना है, स्थिरता लानी है अपने अंदर, वो दो चार स्वमान अपने पास ले ले और 108 बार उसे याद करें या लिखें। देखो कौन से स्वमान हमारी बुद्धि को बहुत स्थिर करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं एक महान आत्मा हूँ। और तीसरा एक बहुत अच्छा स्वमान, मैं पवित्रता का सूर्य हूँ। बिल्कुल आत्मा को चमकती हुई सूरज की तरह तेजस्वी देखेंगे, एकाग्र करें इस पर। तो इसमें दो चीजें हैं, जैसे भक्ति में आपने देखा हो, ये बात सबको पता नहीं है, पर भक्ति की ये सर्वश्रेष्ठ विधि थी कि जिस देवी का मंत्र है देवियों के देवताओं के अलग अलग मंत्र हैं जो उपयोग किए जाते हैं। तो मंत्र का उच्चारण करते हुए देवी के स्वरूप का ध्यान करना भी आवश्यक है, तब वो चीज प्राप्त होगी जो हम देवी से प्राप्त करना चाहते हैं। तो यहाँ भी आप अभ्यास कर रहे हैं, बार बार याद कर रहे हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो आत्मा के तेजस्वी स्वरूप पर बुद्धि को लगाए रखे। वहाँ भी बुद्धि से देवी का दर्शन करते हैं, आंखों से नहीं, घर में बैठ के कर रहे हैं, तो बुद्धि के नेत्र से देवी के स्वरूप पर स्थिर है और मंत्र जाप हो रहा है तो सफलता या सिद्धि मिलती है। एक इनमें से मिस हुआ तो नहीं मिलती है। तो यहाँ भी मैं पवित्रता का सूर्य हूँ और आत्मा को देखते रहे, तो बुद्धि आत्मा पर एकाग्र और मन इस संकल्प पर एकाग्र। तो अगर आप इसे 108 बार करें, इसमें 15-20 मिनट लगाएं, तो आपको पता चलेगा कितनी अच्छी एकाग्रता होती है और इससे शक्तियां जैसे जनरेट होंगी, शक्तियां उत्पन्न होंगी और इसके बाद योग बहुत अच्छा लगेगा। तो स्वयं को शक्तिशाली बनाने के लिए ये ऐसी एकाग्रता बहुत बहुत आवश्यक है। तो सोच लें हमें राजा बनना है, मैं ये नहीं कहूँगा कौन बनेंगे, हमें बनना है, ये नहीं दूसरों को बनने दो हम क्या करेंगे, राजा तो एक होगा, नहीं मुझे बनना है। तो इन क्वालिटीज पे ध्यान देंगे। ओम शांति।
भर लीजिए शांति से, भर लीजिए।